मदर्थे त्यक्त दैहिकहा मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसागतः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहम्। मयी तहा प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यङ्ग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ्य कातरः। धारयन्तति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकः। गच्छोधव व्रजं सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधीन मत्संदेशैर्विमोचय। श्री भगवान उद्धव जी से संदेश दे रहे हैं। हे उद्धव, ब्रजम गच्छ, हे सौम्य, नह पित्रोह प्रीतिमावह, और गोपी नाम मत वियोगाधिम विमोचय मत संदेशय। गोपी नाम का अर्थ है गोपियों का मत वियोगाधिम, मत वियोगे न मम वियोगे न यह आधि पीड़ा तम विशेषेण मोचय। दृढ़ बंधन बंधनवत हृदय संलग्नम पुनः स्पष्टतया त्याजय। आधी विमोचन मात्रमेव तासाम नतु प्रीतिम कर्तुम शक्यसि इत्यर्थ। तच्च मत संदेश ही बहुभिरेव नच तद्वाक् चातुर्जादिना नच द्वित्रैर्वा। भो देव्यः कृष्णेन इदम् उक्तमेव च उक्तमित्येव मुहुर्मत् संदेशत्वेन सद्युक्ति पूर्वक मदीय भाव व्यंजनात् व्यंजनात् आत्मनि मदपेक्षा मननेन तासाम किंचित आश्वासन संभवात्। माने उद्धव जी से गोपियों के प्रति जो संदेश भेजना है, जिस प्रकार से आश्वासन देना है उसको कहना चाहते हैं, उसके पहले गोपियों के साथ अपने संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि उद्धव परम विद्वान व्यक्ति हैं, जैसा कि पहले आप लोगों ने सुना, यदि गोपियों के बारे में बिना बताए भगवान कहते कि गोपियों को मेरा संदेश दे दो, तो उद्धव के मन में अवश्य यह प्रश्न उठता कि गोपियों के साथ इनका क्या संबंध। एक साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है, वो तो वाचस्पति जी के डायरेक्ट शिष्य थे और कई योग्यताएं थी उनमें, तो पूछ सकते थे भगवान से कि आपका गोपीजनों से क्या संबंध। इसीलिए भगवान स्वयं ही गोपीजनों की महिमा बता रहे हैं। देश में एक कारण पहले प्रस्तुत कर रहे हैं कि गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेशर विमोचय। गोपियों को एक बहुत बड़ा दुख है, उस दुख को जाकर नष्ट कर दो। विमोचय, विमोचन, मोचन का अर्थ होता है खुलना। इसका अर्थ यह है कि हृदय में संलग्न हो गया है वो दुख चिरकाल से, उसको तुम्हें दूर कर दो, खोल दो। दृढ़ बंधन की तरह वह हृदय को जकड़े हुए है और वह मेरे संदेशों से, एक दो तीन चार से नहीं बल्कि अनेक अनेक प्रकार के संदेशों से उसे मुक्त करो। यहाँ पर संदेश शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ यह है कि भगवान भिन्न भिन्न गोपियों के लिए भिन्न भिन्न संदेश भेज रहे हैं। जैसे श्री राधा जी के लिए एक संदेश है, फिर चंद्रावली जी के लिए संदेश है, या ललिता विशाखा तुंगभद्रा या और भी चंपकलता सुदेवी आदि हैं, तो इनके प्रति भिन्न भिन्न संवाद भेज रहे हैं। को उनके विरह पीड़ा को दूर करने वाला संदेश भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी से, इसीलिए संदेश ही शब्द कह रहे हैं। बहुत बहुत संदेशों से उनका दुख मोचन कर आए। गोपी नाम विशेषतः संदेश से कारण माह, गोपियों को संदेश देने में कारण बता रहे हैं। मान लीजिए कोई दुखी है, कृष्ण के विरह में दुखी है, चाहे कुछ भी दुखी है, लेकिन संदेश का मुख्य कारण क्या है इसको बता रहे हैं। गोपी नाम विशेषता संदेश से द्वाभ्याम विशेषावस्था वर्णन कारणम वक्तुम प्रथमतः साधारण अवस्थाम वर्णयति। गोपी नाम विशेषता संदेश से द्वाभ्याम विशेषावस्था वर्णन कारणम वक्तुम प्रथमतः साधारण अवस्थाम वर्णयति ता मन मनस्का। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोपियों को विशेष संवाद देने में कारण क्या है, इसको दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। पहले साधारण अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, बाद में वर्णन करेंगे धारयन्त अति कृष्ण प्रायः प्राणन कथंचन, वो विशेष अवस्था है, वही साधारण अवस्था वर्णन कर रहे हैं। और गोपियों को सांत्वना देने में कारण है गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमातिशय, अतिशय प्रेम, तो उसी को व्यक्त कर रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम पृष्ठम आत्मानम मनसागतः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्य हम मन मनस्का। मय्येव संकल्पात्मकं मनो यासाम ता, जिनका मन है सर्वदा मुझ में रहता है, संकल्पात्मकं मन, मन का स्वभाव है संकल्प करना, विकल्प करना, तो यहाँ केवल संकल्पात्मक अर्थ लिया, संकल्प करना, सोचना, मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो भगवान कहते हैं गोपियां ऐसी हैं जो केवल मेरे विषय में संकल्प करती, कभी अपने देह के विषय में भी संकल्प नहीं करती हैं, फिर अपने परिवार के काम धंधा के विषय में, पति के विषय में और बच्चों के विषय में, तो कभी वो सोचती ही नहीं, इसको मन मनस्का कहते। जैसे भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव, मन से केवल मेरा चिंतन करती। मन मनस्का इति बाह्य सर्व प्रियार्थ अनादर, श्री कृष्ण के अलावा अन्य संसार के जितने भी प्रिय पदार्थ हैं, परिवार है, सब कुछ है, उसमें अनादर ध्वनित हो रहा है इस शब्द द्वारा। ये मन मनस्का है, मुझमें ही उनका मन लगा रहता है, अन्य कहीं उनका मन नहीं जाता, सोचती भी नहीं कुछ भी। ये पहली विशेषता दे रहे हैं। अथवा मन मनस्का मेरे मन को आकर्षित करने वाली, मम मनो जासुता, मेरा मन जिनमें लगा हुआ है वे, इसका दोनों अर्थ होगा। उनका मन मुझमें लगा हुआ है, एक अर्थ ये होगा वो मेरे विषय में ही केवल सोचा करती हैं, संकल्प करती हैं, अथवा मैं केवल उनके विषय में सोचा करता हूँ, मन मनस्का, मेरा मन उनमें ही है। मम चित्ता कर सिंड्या इत्यर्थ, मेरे चित्त को आकृष्ट करती। अथवा मई मनसह कम सुखम जासम, मुझमें उनका मन लगा रहता है और यही उनका सुख है। मन मनस्का, कह का अर्थ होता है सुख। मई मनसह कम सुखम जासम ता, वो सर्वदा मेरे विषय में ही चिंतन किया करती हैं, संकल्प करती हैं, कभी संसार के घर द्वार के अपने काम धंधा के देह तक के चिंतन में भी उनका मन नहीं रहा, कभी चिंतन नहीं करता। इतना ही नहीं, मत प्राण अहम एव प्राणो यासमता, मैं ही जिनका प्राण हूं। मत प्राण इति ततोपि प्रियाणम अंतरीण सर्वार्थ अनादर, मैं ही उनका प्राण हूं, मेरे कारण ही वे जी रही हैं। इस संसार में और सबके प्राण हैं, ये हम लोगों को हवा सांस लेने के लिए न मिले तो मर जाएंगे, है ना। हम लोग इस समय जी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कृष्ण का नाम लेकर जी रहे हैं। दिन दिन भर कृष्ण का स्मरण न हो फिर भी तो लोग सुखी हैं, काम धंधा करके जी रहे हैं क्योंकि सांस लेने को मिल रही है। तो हम लोगों का प्राण ये वायु है, लेकिन गोपियों के प्राण है श्री कृष्ण। अथवा मत प्राण का अर्थ है कि वे मेरी प्राण भूता है, मेरी प्राण प्यारी, मेरे प्राण के भी प्राण है और श्री कृष्ण गोपी जनों के प्राण के भी प्राण है। कुतः कैसे बात कहते हैं तो इस पर भगवान कहते हैं, मदर्थे त्यक्त दैहिका, मदर्थे मेरे लिए त्यक्त दैहिका पति पुत्रादयो याभिता, मेरे लिए उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया। अब इससे अधिक निकट के संबंधी कौन होंगे स्त्रियों के लिए। मदर्थे मेरे लिए दैहिका देह के संबंधी त्याग दिए गए जिनके। इस संसार में देह का संबंध त्याग करना बहुत कठिन है। दैहिक का अर्थ होता है देह के संबंधी, दैहिक या देह की आवश्यकता, भोजन करना, सोना। दैहिक का अर्थ है देह के संबंधी। छोड़ देती, छोड़ दिए गोपियां। मदर्थ मदे का अपेक्षा त्यक्ता पूरा एवं उपेक्षिता दे, और मेरे लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मेरा विरह होने पर मेरे चिंतन में छोड़ दिए, जब मैं ब्रज में था उसी समय छोड़ दी थी, इस समय छोड़ी है यह बात। इस समय तो कोई स्मरण ही नहीं है उनको, परिवार आदि का, लेकिन जब मैं ब्रज में था तो उसी समय छोड़ चुकी थी। कितनी बड़ी योग्यता है, कितना बड़ा प्रेम है गोपियों का। भगवान अपने श्रीमुख से इस बात को गा रहे हैं, अपने मित्र से, मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी, पूरा है वो उपेक्षिता। दैहिका का एक और अर्थ है पति पुत्र पितृ शयन भोजन पाना दैवापी, वो सब कुछ छोड़ चुकी। इसका कारण क्या है, कैसे वो छोड़ दी हैं? क्योंकि ताह माम एव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गता, माम एव न तु स्वस्व पतिम अन्यम, मुझमें ही ब्रजेंद्र नंदनम एव माम एव परमात्मानम अपि माम, यद्यपि मैं परमात्मा हूँ सबके हृदय में हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा समझ करके नहीं, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में मैं हूँ, नंद बाबा के पुत्र के रूप में, वही मैं उनका दैत हूँ। माँ में वह दैतम मन सागता, वो मन में मुझे ही अपना अपना पति मानती है। माँ में वह दैतम मुझे ही अपना पति मानती है, और इतना ही नहीं तत्रापि प्रेष्ठम प्रियतमम, हमें प्रिय मानती है, हमारे द्वारा उनको और कुछ अभिष्ट नहीं है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से चाहती है हमें पुत्र मिले, हमें धन मिले, कमा करके दें, खाएं पिए, अपेक्षा रखती है, वो हमें पति मानती हैं, लेकिन प्रेष्ठ मानती है, प्रियतम मानती है, मैं ही उनके जीवन का सब कुछ हूँ, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं करते। और आत्मानम, वे मुझको आत्मा मानती है, मन सर आत्मा मानती। एक कवि ने एक संस्कृत में लिखा है, भक्त ने, एक बार राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण बातचीत कर रहे हैं तो कहती हैं, राधे तुम मेरी हो तू और मैं तुम्हारा हूँ, यह कहना ही गलत है, या मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तुम मेरी प्यारी हो, यह कहना भी गलत। वे कहते हैं कि तुम्हारे और बीच में अस्मत जुस्मत शब्द का प्रयोग ही व्यर्थ है, मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूं मैं और तुमको तुम कहूं तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारे और तुम्हारे बीच यह मैं हूं या तुम हो, इस अस्मत जुस्मत शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत है। इतना प्रेम है कि इस शब्द की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो यही भगवान कहते हैं मुझको मैं मानती है, अर्थात इस संसार में सबसे अधिक प्रिय किसी को कोई है तो है आत्मा। आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है और मैं ही उनकी आत्मा, इतना मुझसे प्रेम करती है। आत्मानं मनसा गतः, गतः का अर्थ है जानन्ति इति अर्थ, निश्चितवत्य इति वा ज्ञातवत्य, न केवलम दैतमेव अपितु प्रेष्ठम, न च प्रेष्ठमेव किंतु आत्मानं ताभी अहमेव सच अहमत्र। वो गोपियां मैं हैं, मैं गोपी हूँ, मत अत्र मथुराया मतस्ता भी स्वस्व देहा निर्गतम आत्मा ने व मनयंत। मैं मथुरा में आ गया हूँ, गोपियां यही मानती हैं कि उनके देह की आत्मा निकलकर मथुरा चली गई, वो ऐसा मानती, वो जीवित अपने को नहीं मानती। ये तो मेरी योग माया है कि उनको जीवित रख रही है, वो किसी तरह से जीवित हैं। ये दुस्तर्क शक्ति है मेरी, वही जिला रही है गोपियों को, नहीं तो उनका तो प्राण, उनका मन, उनकी आत्मा सब कुछ निकल चुकी है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये उन्होंने निश्चय कर लिया। ततः की मत आया, श्रीधर स्वामी जी प्रश्न करते हैं, ठीक है ऐसा है, इससे क्या मतलब, तो आप संदेश क्यों दे रहे हैं? तो भगवान इसके बाद कारण बता रहे हैं कि मदर्थे ये त्यक्त लोक धर्मश्च मदर्थे तान विभर में है। सामान्य बात बता रहे हैं, जो लोग मेरे लिए धर्म और लोक का त्याग कर देते हैं मैं उनका पोषण करता हूं। साधारण ये गोपियों से भिन्न ये शब्द है, पुलिंग में है, यह शब्द नहीं है, ध्यान से सुनना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, इसमें अधिकार की बात नहीं कही, जो कोई भी व्यक्ति मदर्थ है मेरे लिए लोक और धर्म का त्याग कर देते हैं उनका पोषण मैं करता हूं, मैं उनको सुखी करता हूं। इसका अर्थ इस तरह से, ये जना त्यक्त लोक धर्म इह मूत्र सुखे तत्साधनानी च यही ते जना पोषयामी संवर्धयामी सुखयामी इत्यर्थ, मैं उनको सुखी करता हूं। ये च, च शब्द का अर्थ है कि मोक्ष से भी वे अनपेक्ष रहते हैं। मेरे लिए जिन्होंने मुक्ति छोड़ दिया है, भोग छोड़ दिया है, देह का सुख और धर्म की वर्णाश्रम धर्म की भी जिनको चिंता नहीं है, इसको कहते हैं धर्म। और लोक, लोक और धर्म दो चीज है। लोक का अर्थ है अपना परिवार, स्वजन संबंधी, इनकी अपेक्षा रखना, और धर्म का अर्थ है वर्ण आश्रम आदि के जो नियम है उनकी अपेक्षा करना। तो मेरे लिए जो वर्ण धर्म छोड़ देते हैं, मेरे लिए जो परिवार आदि की उपेक्षा कर देते हैं, उनका भरण पोषण मैं करता हूँ, मैं उनको सुखी करता हूँ। फिर गोपी जनों के विषय में तो कहना ही क्या है, इसलिए उद्धव मुझे चिंता लगी है और मैं गोपियों को सुखी करना चाहता, तो उन लोक और धर्मों की रक्षा मैं करता। यदि गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था, घर द्वार पति पुत्र आदि, लेकिन भगवान सबकी संभाल कर रहे थे, छोड़े हुए धर्म की रक्षा कर रहे थे, ऐसा देखा गया है भक्तों के द्वारा। भगवान कोई भी बात बिगड़ने नहीं देते हैं दोनों के लिए, जो त्याग दिया है धर्म उसका भरण करते हैं और त्यागे हुए धर्म और लोक की रक्षा करते हैं। इसी पर सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं, अहम शब्द दे रहे हैं, जबकि केवल क्रिया से काम चल सकता है। विभर्मी, विभर्मी का अर्थ ही होगा मैं उनका पालन करता हूं, लेकिन अहम विभर्मी का क्या मतलब है? अहम शब्द लगाने की क्या आवश्यकता हो गई? तो अहम विभर्मी का अर्थ यह श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी करते हैं, अहम ब्रह्मादि ध्येय अपि विभर्मी अंतर्धारयामी इत्यर्थ, सदा चिंतयामी इत्यर्थ। विभर्मी का अर्थ है धारण करना, ढोना, मैं उनको ढोता हूँ। साधारण भक्त भी जो मेरे लिए लोक धर्म छोड़ चुके हैं, मैं उनको सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ। मैं ब्रह्मा आदि का ध्येय, मैं श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव हमें हमेशा अपने मन मंदिर में धारण करते हैं, लेकिन ऐसा मैं महान महिमा वाला उन भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो मेरे लिए लोक और धर्म का त्याग कर देते हैं। और फिर गोपीजनों के विषय में तो कहना ही नहीं, मैं उनको धारण करता हूँ। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि गोपीजन मेरे मुझको अपने हृदय में धारण कर रही हैं और मैं उनको अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। तो गोपियों को जो ताप हो रहा है, जो जल रही हैं, वास्तव में मैं जल रहा हूँ उद्धव। मेरे हृदय में बहुत बड़ा ताप हो रहा है क्योंकि मैं उनको अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। साधारण भक्तों को ही मैं हृदय में धारण करता हूँ। साधु नाम हृदयम त्वहम, साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। सामान्य साधुओं के लिए भगवान बता रहे हैं और वहाँ भी कहते हैं ये त्यक्त दारागार कुछ ऐसे जो छोड़ देते, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। गोपियों ने सब कुछ छोड़ा था, पत्यादि लोका, लोक का अर्थ पति आदि, और भोजनादि देह धर्मा, धर्म कई होते हैं, तो भोजन आदि देह के धर्म को छोड़ चुकी थी। लज्जादि साध्वी धर्मा, तो तान अपि अहम विभर्मी रक्षामि, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी लज्जा जाने नहीं देता हूँ, ये अर्थ है। उनके शरीर की रक्षा मैं करता हूँ, वे अपने शरीर की रक्षा नहीं कर रही हैं लेकिन मैं करता हूँ। तो इसी तरह से कोई भी भक्त यदि भगवान के लिए शरीर की उपेक्षा करता है तो भगवान उसके शरीर की रक्षा करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि 3:30 बजे उठूंगा तो ठंडा मार देगा, भगवान रक्षा करेंगे। यदि भगवान के मंगला आरती के लिए कोई उठ रहा है तो कभी ठंडा नहीं मार सकता, बल्कि ओढ़ना ओढ़ करके रहने वाले को कुछ ना कुछ ठंडा मारेगा ये निश्चित है। भगवान ने यहाँ पर जिम्मेवारी की बात कह रहे हैं। कोई उद्धव जी ने प्रश्न नहीं किया है, जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव का वर्णन स्वयं अपने स्वतंत्र स्वच्छंद मन से करे तो प्रमाण बात होती। भगवान कहते हैं मैं रक्षा करता हूँ, मैं बचाता हूँ, भक्त को सुखी भी करता हूँ और उसके द्वारा जो धर्म का त्याग हुआ है, लोक का त्याग हुआ है। मान लीजिए कोई भगवान का भक्त होकर के अपने घर के कुछ लोगों को छोड़ दिया, जैसा होता है ना, लोग कहते हैं कौन इनको खिलाएगा, कौन पिलाएगा, वो तो छोड़कर चला गया। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा, चिंता की कोई बात नहीं है। विश्वम्भर भगवान रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य को यही अपेक्षा होती है ना कि मैं छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई चिंता नहीं है। वो खुद कह रहे हैं मैं चलाता, मैं सुखी रखता हूँ। और वैसे तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास स्वर्ण से वो तो है ही, लेकिन स्पेशली जो उनके लिए त्याग कर दे तो वो तो फिर स्पेशल अटेंशन से करते हैं। तो यह जब भगवान का स्वभाव है तो फिर गोपी जनों को भी सुखी करना चाहे, इस विषय में तो कहना ही क्या है। इसी को कैमुत न्यास भगवान ने उद्धव से कहा, क्योंकि उद्धव जी प्रश्न कर सकते थे कि ठीक है आपसे प्रेम करते हैं तो आपको इससे क्या मतलब, मैं पालन करता हूँ, मैं सुखी करता हूँ उनके पतियों को, उनके पुत्रों को, उनके स्वजनों को और उनको सबको ठीक से रखना है मेरा कर्तव्य, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने छोड़ा है। क्या वियोगाधि है उनकी, किस प्रकार का दुख है। तासाम वियोगाधिम दर्शयति द्वयेन मयिता इति भावार्थ दीपिका, किंतु मदाधिर अपि तासाम आधिर गरियानिति सोचन आह मयिति। मुझे जितनी चिंता है उद्धव, लेकिन मुझसे कोटि कोटि गुना दुख गोपीजनों को है, क्योंकि मैं कई कई कार्यों में फंसा हूँ। अभी ये कार्य करना, कभी वो कार्य करना, अभी ये कार्य करना, लेकिन वो तो निरंतर केवल मेरे ही विषय में शोक कर रही हूँ, सोच रहे हैं, इसलिए उनका दुख बहुत ज़्यादा है। अथवा ननु या भवन मनस्काद रूपा स्ता लब्ध भवत का एवं तरही कथम अनुसूच्यता, यदि आप में ही उनका मन लगा है और आप आनंद घन हैं, तो फिर उनको दुख क्यों होता है? आपका चिंतन आदि तो हो रहा है। सत्यम अंतर अनुसंधान न तादृश्य अवता किंतु बहिर अवधान न जाते परम व्यग्र भवन्ति इत्यादि। अथवा भगवान से प्रश्न किया जा सकता है कि आप जब उनको हृदय में धारण कर ही रहे हैं या उनका भरण पोषण करते ही हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको चिंता क्यों है? तो भगवान कहते हैं तो अंतर्दृष्टि से सब ठीक बात है, लेकिन बाह्य दृष्टि से वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं दूर हो गया हूँ, उसी को कह रहे हैं। मयी ताह प्रेयसाम प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्यंग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठकातरः। प्रेयसाम प्रेष्ठे मयी दुरस्थे, इस संसार में जितने भी प्रीति के विषय हैं, प्रेम के विषय हैं, उन सब में जो श्रेष्ठ हैं प्रिय पदार्थ, उनमें भी प्रिय मैं हूं सभी जीवों के लिए। लेकिन गोपियों ने इसका साक्षात्कार किया, भगवान प्रिय से भी प्रिय है। प्रेयसाम प्रेष्ठ, प्रीति के विषय हैं बहुत से, जैसे ममतास्पद, ममतास्पद से भी बढ़ करके अहंतास्पद, अहंता के विषय, आस्पद का अर्थ होता है विषय। जैसे इस संसार में हम लोगों के बहुत से प्रिय हैं जिनको मम कहते हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं, प्रिय हैं, लेकिन मेरे जितने प्रिय हैं उससे अहम ज्यादा प्रिय है ना, अहम तास्पद, देह अधिक प्रिय है। इसलिए प्रेसाम पृष्ठ, प्रियतमों में भी प्रियतम मैं हूं, और इस समय ऐसे ऐसा प्रियतम मैं दूरस्थ है, मैं दूर हो गया हूं। दर्शन में गोपियों को आंखों का पलक निक्षेप भी बहुत दुख देता था, पलक का गिरना, तो इस समय मैं कितना दूर हो गया हूँ इसकी तो कोई सीमा ही नहीं। जब पलक का गिरना भी उन दर्शन में बाधा देता था तो उसको सह नहीं सकती थी। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चपे जल उदीक्षितम पक्ष की दृशाम, अलकों से युक्त श्रीमुख का दर्शन हम करती हैं और उस समय पलकें गिरती हैं तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी हमारी दृष्टि में बिल्कुल जड़ जैसे लगते। ये कितना मूर्ख है कि हमारी आंखों पर पलक बना दिए, जड़ उद्दीक्षता पक्ष में कृत दृशाम पक्ष में कृत, पर आंखों पर पलक बनाने वाला कितना मूर्ख है। उस समय ब्रह्मा के प्रति बहुत आक्रोश होता था गोपियों को। यदि कभी उनसे भेंट हो जाती तो हम लोग बताते कि हमें हजारों लाख आंख दो और निष्पलक दो, तब हम कृष्ण को ठीक से देख पाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि निकट रहने पर पलक गिरने का व्यवधान भी वे नहीं सह सकती थी। आज वही प्रियतम ब्रज में नहीं मथुरा में चले गए हैं तो कितना दूर हो गए हैं उनकी दृष्टि में। इसलिए भगवान स्वयं ही प्रयोग करें दूरस्थ है, मैं दुरस्त हो गया हूँ, इससे बहुत दूर आ गया मैं। वे मेरी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, जब मैं यहाँ था, जब मैं ब्रज में था उन लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, या मैं मथुरा में हूँ तो मेरे विषय में वे सोचती रहती हैं कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे, इस तरह से। अभी हैं गोकुल स्त्रियाँ, गोकुल की स्त्रियाँ माम स्मरंत्या, मेरे विषय में हमेशा शोक कर रही हैं, सोच रही हैं, या ब्रज में जो मैं लीलाएं कर रहा हूँ उसका स्मरण कर रही हैं, और अंतिम फल क्या हो रहा है, विमोहयन्ति। ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग भगवान कर रहे हैं कि वो मूर्छित हो रही हैं। भगवान अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं कि कोई गोपी मूर्छित होकर के जमुना तट पर गिरी है, कोई घर में, कोई हा हा कर रही है, कोई छाती पीट रही है, अधिकांश मूर्छित। यह विमोह का यह अर्थ होता है, विशेषेण मोहम प्राप्ता प्राप्नुवन्ति, मोह का अर्थ है मूर्छा, संज्ञा शून्य, विमोहयन्ति। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि स्मरण दीर्घकालीन नहीं है, दीर्घकालीन मूर्छा है, कि स्मरन्त्यो विमोहयन्ति, स्मरण करती हुई विमोहित हो जा रही। तो स्मरण इस बीच में थोड़ी सी क्रिया जैसी लग रही है और विमोह ही स्थायी भाव बना हुआ है, तो मूर्छा की जो स्थिति है वो चिरकाल तक, बहुत देर तक मूर्छा में पड़ी हुई है। अनिर्वचनीय स्वभाव उक्त स्वभाव मदेक प्राण बल्लभा स्मरंत्य तत्मम दुरस्थत्वम भावयंत तद भावना रंभवत्य एवं माम रास क्रीड़ादिकम व स्मरंत्य। स्मरंत्य शब्द के लिए कोई कर्म शब्द नहीं है, किसका स्मरण ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा स्मरण, माम स्मरंत्य वो अपने आप जुड़ा हुआ है, अथवा मेरी क्रीड़ाओं का रास क्रीड़ा आदि का स्मरण करके, मेरी लीला का स्मरण करके, मेरा स्मरण करके ही स्मरण चालू होता है, उसी समय मूर्छा में गिर जाती है, गिर करके और कृष्ण 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 लघु स्वर से उच्चारण करती, ऐसा शिल्पा सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते चिंत्यंत कृष्ण कृष्ण इति लघु लघु कृत्यंतो वा विस्मर्तुम अशक्नु अंत्य वा विरहत कंठ भी वाला विरहेणा औत्कंठ, विरह के कारण मिलन की अति उत्कंठा से बिहवल हो जाते हैं। लम का अर्थ होता है चाल चलना और बिहवल का अर्थ है निस्तब्ध हो जाना, चल आँख काम न करे, हाथ काम न करे, पैर स्तंभित हो जाए, इसको बिहवलता कहते। विगत वलम जाभ्यता जिनसे जाभ्यता जिनसे स्पंदन चाल दूर हो गया, इसको बिहवल का परवश हो जाना, जैसे बोली नहीं निकलना, आंखों से कुछ देख नहीं पाना, कान से सुनना नहीं, हाथ नहीं उठना, पैर नहीं चलना, इसको बिहवलता कहते या परवशता कातरता। तो विरह के उत्कंठा के कारण वे बिहवल हो और विमोहियंती विशेषण मोहियंती मूर्छां प्राप्नुवंती चिरम नष्ट संज्ञतया भूमौ पतिता तिष्ठन्ति इत्यर्थ। वर्तमान क्रिया से भगवान यह कह रहे हैं कि अभी भी हजारों हजारों लाखों लाखों गोपियां मूर्छित गिरी हैं मेरे विरह में, ब्रज में, मैं देख रहा हूं यहीं से। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पतिता तिष्ठन्ति इति अर्थ एवं तथा भावनाया स्वल्प कालत्व, स्मरण की जो स्थिति है वो स्वल्पकालीन वर्णन कर रहे हैं भगवान, और मूर्छायास्तु चिरस्थायित्व व्यंजितम, मूर्छा की दशा चिरस्थाई है। इसके द्वारा मानो भगवान यह कह रहे हैं कि हाय हाय, यदि मेरा स्मरण कर सकती तो कुछ उन्हें सुख भी मिलता है, लेकिन वो तो स्मरण भी नहीं कर पाते हैं, जब ही स्मरण होता है मूर्छित होकर गिर जाती है। जो स्मरंत्य शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान के द्वारा, इसका अर्थ है ब्रज की लीलाओं में उनके चित्त का अभिनिवेश, वही भगवान को बांसुरी बजाते हुए या रासलीला करते हुए, गोवर्धन उठाते हुए, काली के फाण पर नृत्य करते हुए, ये सब समय भगवान श्री कृष्ण उनका जैसे श्रृंगार करते थे, उनके पैर पर गिरकर मनाया करते थे और कई तरह से मनोहार करते थे, श्रमहार करते थे, उसका स्मरण आ रहा है। लेकिन जब ही स्मरण आता था तेम ही मूर्छित हो जाते थे। प्रेम की पराकाष्ठा, इसको दिव्य उन्माद कहते हैं, दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद, उन्माद नहीं, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने इसको उन्माद नहीं कहा है, दिव्य उन्माद कहा है, ये अप्राकृत उन्माद है। उन्माद का अर्थ है कि प्रेम की ऐसी दशा घनीभूत होती है जबकि वह प्रेमी उस प्रेम के दबाव में, प्रेम के आवेश में कुछ बकता है, कुछ कहता है, कुछ चेष्टाएं करता है, तो उसको दिव्य उन्माद कहते हैं, प्रेम की बहुत ऊंची दशा में होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्माद में है, विमूर्छित पड़ी रहती है। तो क्या क्या याद करके गोपियों को इस प्रकार की दशा का सामना करना पड़ रहा है, एक भक्त ने इसको लिखा है एक पद में, गोपियां आपस में बात कर रहे हैं, विशेष करके राधा रानी एक बार सावन के महीने में अपनी सखियों से कह रही है, आयो सखी सावन विदेश मन भावन जो कैसे करी मेरो चित हाय धीर धरी है, आई है कौन झूलाना हिंडोरे बैठी संग मेरे, कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है। सावन आ गया लेकिन हमारे मनमोहन नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, मेरा चित कैसे धैर्य धारण करेगा, अब कौन मेरे साथ हिंडोरे पर बैठेगा। मैं उनके साथ झूली हूँ सावन में एक साथ, अहे कौन झूला न हिंडोरे बैठी संग मेरे, कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है। और अब कौन हमारी भुजा में हमारे कंठ में अपनी भुजा देंगे, और वो भी मनुहारी मना करके, मैं मान करूंगी और मुझे मना करके मेरे कंठ में अपनी भुजा को वो अब नहीं डालेंगे। हरिचंद भींजता बचाए हैं कौन भींजी आप, कौन उरत लाई काम ताप निरवारी हैं। सावन का महीना आ गया, फिर वर्षा होगी, वर्षा में स्वयं भींज करके मुझको कौन बचाएंगे। भींज करके राधा रानी को बचाते थे वर्षा में। याद आ रही है झूलन लीला, हम लोग देखते हैं चित्रों में राधा रानी के साथ भगवान झूल रहे हैं। तो वह दिन सावन के जबकि श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रहे हैं और सावन में झूलनोत्सव होता है, आज भी मंदिरों में सब जगह झूलन का उत्सव होता है। तो याद कर रहे हैं कि अब मैं के साथ झूले पर बैठूंगी और अकस्मात यदि वर्षा होने लगेगी तो मुझको भींजने से अब कौन बचाएंगे। इस प्रकार की अभिलाषाएं उठ रही। हरिचंद भींजा तब बचाई है कौन भींजी आप, कौन उरलाई काम ताप निर्वारी है, कौन मुझे हृदय से लगाएंगे। मान समय पग परी कौन समझाई है हाय, वही लीला याद आ रही। जब मैं मान करके बैठती हूँ तो प्रियतम हमें समझाते हैं, हमारे पैर पर गिर करके मनाते हैं, मनाते थे सखी, अब वह दिन नहीं आएगा जब मुझे वो मनाएंगे। मान समय पग परी कौन समझे है, कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी हैं और मुझे प्राण प्यारी कहेंगे, श्री राधे कहेंगे। तो इस प्रकार की लीलाओं का स्मरण आते ही गोपियां मूर्छित होकर के गिर जाती थी और विविध देश में विविध काल में उन लीलाओं का स्मरण होता रहता था। कभी कभी कोई गोपी खाली गगरी लेकर के जमुना पर भरने जाती थी कि वहाँ पर कृष्ण से भेंट हो जाएगी, वो पनघट पर मेरी गागर को फोड़ेंगे और पानी ऐसे लेकर के और खड़ी है कुंज की तरफ देख रही है कहीं से वो आएंगे और ढेला मारेंगे हमारी गगरी छूटे, और दिन भर वैसे खड़ी की खड़ी रह जाती। तो कृष्ण है नहीं कि वहां आवे, कोई कहीं जहां जहां देश का सेवन करती है, वैसे जगह पर जहां श्री कृष्ण फूल तोड़े हैं गोपी का श्रृंगार किए हैं तो वहां जाकर के वो बैठती है। और कभी कभी राधा रानी तो ऐसे मान करके बैठ जाती हैं कि आएंगे मनाएंगे, ये बात भूल जाती है कि वो मथुरा गए। ये सब उन्माद की दशाएं होती है। तो बड़े बड़े भक्तों ने आचार्यों ने इन लीलाओं का वर्णन किया है और इसमें मति और वाणी शरीर जब व्यस्त होता है तल्लीन होता है तब बातें समझ में आती हैं, लेकिन भगवान के वाक्यों से हम लोगों को कुछ दिग्दर्शन मिलता है गोपीजनों की स्थिति का। उठता है कि यदि वे आपसे इतना प्रेम करती हैं, आपको प्रियतम मानती हैं, प्रेष्ठ मानती हैं, आत्मा मानती हैं, सब कुछ मानती हैं, तो वे स्वयं ही मथुरा क्यों नहीं आ जाती हैं। कोई दूर तो है नहीं, और किस तरह से जी रही है, दो प्रश्न है। मथुरा क्यों नहीं आ जा रही, तो इसी का उत्तर दे रहे हैं भगवान। गोकुल स्त्रिया, गोकुल की स्त्रियां, गोकुल की स्त्री कहने का एक विशेष भाव है। इसका अर्थ है गुंजा गैरिक मुरली मयूर पिछा दलंकृत न गोप वेशे नहीं व मया सहतत्र गोकुले व बिलासे प्राप्त मनोनिष्ठा मया अपि अत्र आने तुम अनभिप्रेता कथम विष्णु पूर्जाम आगछति भाव। वो हमारे उसी रूप में मन को लगाई हैं जो रूप वृंदावन बिहारी का है। जैसे गैरी के एक धातु होती है, पत्थर होता है मिट्टी लाल लाल, उसको उसके द्वारा मैं चित्र बनाता हूँ अपने शरीर पर, पत्र रचना करता हूँ, अलंकार जो गैरी कहता है, और गुंजा की माला पहनता हूँ, मोरपंख धारण करता हूँ, तो मेरे उसी रूप में उनका मन निष्ठ है। मेरे इस मथुरा बिहारी रूप को देखना पसंद नहीं करते। और दूसरी प्रवस्था ये है कि हमारा और उनका जो संबंध हो वृंदावन के अंदर सीमित है, तो वो ये सोच करके नहीं यहाँ आ रहे हैं कि हम लोग यदि मथुरा जाएंगे तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का असम्मान होगा वहाँ, ये सोच करके हमारे यश के लिए, हमारी इज्जत के लिए वो नहीं आ रही है ना। यहाँ से हजारों गोपियाँ चल दें मथुरा और वहाँ लोग देखें ये क्यों आई, तो ये सब श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, तो इसमें श्री कृष्ण की मान हानि की बात आएगी, ये सोचकर को मथुरा नहीं जा रहे। और कठिनाई गोकुल की स्त्रियां हैं, श्री कृष्ण के वृंदावन बिहारी ब्रज बिहारी स्वरूप को ही वो देखना चाहती हैं, उसी में उनका मन रमा हुआ है। वृंदावन सीमा से बाहर जो श्री कृष्ण का रूप होता है गोपियों का मन उसमें नहीं लगता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में श्री राधा रानी को दर्शन दिए और गोपियों को, वे लोग खोज रहे थे कृष्ण को और कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, तो उनको देख करके गोपियां प्रणाम करके कहती हैं कि आप हमारे प्रियतम को देखे हैं इधर कहें, और उनमें उनका मन गया नहीं, तनिक भी पसंद नहीं, केवल प्रणाम किए कि ये भगवान हैं और सर्वज्ञ हैं, तो उनसे पूछने लगे कि हमारे प्रियतम कृष्ण को आपने देखा है। तो यह एक निष्ठ प्रेम है, तो वृंदावन बिहारी के स्वरूप में ही रमी रहते हैं। गोकुल स्त्री का यह भाव है, ऐसे जीवित हैं, जब इतना प्रेम है आपके प्रति तो जीवित कैसे हैं, तो इसका उत्तर भगवान देते हैं। धारयन्तति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिकः अथ तसम दसमी दशम अपि संकते। उद्धव जी को शंका हो गई कि जब इतना विरह में पीड़ित हैं तो कहीं दसमी दशा न आ जाए, दसमी दशा मृत्यु को कहते हैं, तो ये तो मर भी सकती हैं इस दशा में, इस विकट दुख की स्थिति में। तब भगवान कहते हैं मदात्मिका मे वल्लभ्य प्रत्यागमन संदेश ही अति कृष्ण कथंचन प्राय प्राणान धारयन्ति। मेरी गोपियां अति कृष्णेण प्राणान धारयन्ति, बहुत कष्ट से अपने प्राणों को वे धारण कर रही। धारयन्ति का अर्थ है पकड़ करके रखना, उनके प्राण तो शरीर को छोड़ करके मथुरा में भागने के लिए तैयार है मेरे पास, वो कब की मर गई होती, लेकिन बहुत कष्ट से अपने प्राणों को धारण कर रहे। अति कृष्ण, अति कृष्ण का अर्थ है कि मरणादपि अधिक दुखेन, मरण से भी अधिक दुख से वे प्राणों को धारण कर रहे हैं, वे उसे मर जाना बल्कि अच्छा है, संसार में इतना कष्ट हो रहा है प्राण धारण कर रहे हैं, लेकिन बहुत कष्ट से प्राणों को धारण कर रहे हैं। अति कृष्ण और भी कथंचन केनापि प्रकारेण, अब किस तरह से प्राण उनका बच रहा है मैं क्या कहूं, कथंचन तुम परम विद्वान व्यक्ति हो, समझ सकते हो किस तरह से वे जी रहे हैं। और प्रायः, प्रायः का अर्थ है वो जी रही हैं, प्राय धारयंती के साथ प्रायः लगा हुआ है, प्रायः जी रही मतलब जी भर रही है। और एक प्रकार से कसांचित निश्चेष्टतया मृतत्व नैव व्यवहारात्, अभी उनको अगर कह दिया जाए कि वो मर गई हैं तब भी यह तो अतिशयोक्ति नहीं होगी उद्धव, क्योंकि उनका कोई भी व्यवहार नहीं हो रहा है। घर के लोग उनके तो समझ चुके हैं किसी किसी को कि ये तो या मर जाएगी, दो चार दिन में मर जाएगी, कोई खान पान नहीं, कुछ भी नहीं, न नींद रात में एक मिनट, न कुछ भी। इसको प्रायः शब्द से भगवान व्यक्त कर रहे हैं, वे जी रही, अपने प्राण धारण कर रही। अथवा प्रायः शब्द गोपियों के लिए लगा है संख्यावाचक, कि प्रायः जी रही हैं मतलब बहुत कष्ट से बहुत जी रहे हैं, लेकिन कोई कोई मर भी गई, ये अर्थ, कोई कोई जीवित नहीं है, वो कष्ट को सह नहीं सके। धारयंती धारण कर रही है, यहां पर कह रहे हैं कथंचन किसी तरह से जी रही हैं। अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं, उद्धव जी को जिज्ञासा है कि नहीं आखिर कारण क्या है, कैसे जी रही हैं, तो उसी वो कहते हैं प्रत्यागमन संदेश, मैंने कह दिया था आते समय ब्रज से कि मैं लौटूंगा मथुरा से, बस इसी संदेश के कारण वे जी रही है, उनको आशा है कि मैं आऊंगा, बस इसी के कारण वे जी रही, नहीं तो नहीं जी सकती। धारयन्त कृष्ण प्रायः प्राणं कथंचन प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिका। तो प्रियतम, कृष्ण के विरह में ब्रज में सब कुछ विषैला दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई स्थान, भोजन या स्वजन या पशु, कोई भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। घनानंद जी कविता लिखते हैं गोपियों के भावों को प्रकाशित करते हुए, गोपियां कहते हैं कि वे ही कुंज पुंज जिन तारे तन बाढ़त, जित तारे तन बाढ़त, वे ही कुंज पुंज, कुंजों का वह समुदाय जिनके भीतर, जिनकी छाया में आने पर शरीर स्वस्थ हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था। जब प्रियतम यहाँ थे ब्रज में, तो उनके संग जब हम कुंज की छाया में आती थी तो तन बाढ़ा था, शरीर बढ़ जाता था, प्रसन्न हो जाता था, सुखी हो जाता था। तीन छाह आए अब गहन ज्यों गही गौ, लेकिन आज वही कुंज है और वही छाया है, कुंज के छाया में आते ही ऐसा लगता है कि ग्रहण की छाया लग गई। तीन छाह आए अब गहन न ज्यों गही गौ, गहन माने ग्रहण, अब ग्रहण जैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, जैसे ग्रहण की छाया कोई नहीं शरीर पर लेना चाहता है, उस तरह से आज लग रहा है। सुरति सुजान चैन बीची न सो सींची जिन, वही जमुना पे आली वह पानी बही गौ। एक दिन ऐसा समय था जब जमुना में हमारे प्रियतम विहार करते थे, जलकेली करते थे, हम लोग उन पर पानी उछालते थे, वे उछालते थे, जल विहार करते थे। तो श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद से सींची हुई लहरों वाली ये जमुना, लेकिन सखी आज वही जमुना है लेकिन वह पानी बह गया, वह पानी नहीं रहा, वही जमुना प्याली वह पानी बही गौ। वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिये देह दैया महा दुख दही गौ। वही हवा वही पवन कितना अच्छा लगता था जब प्रियतम हमारे साथ थे, फिर हम लोग नाचती थी गाती थी, बहुत परिश्रम होता था, लेकिन सुख श्रम स्वेद समय, सुख का जो परिश्रम होता था, परिश्रम के कारण जो पसीने निकलती थी शरीर से, पसीनों को सुखाता था पवन, तो कितना अच्छा लगता था जब हम कृष्ण के साथ थे। लेकिन आज वही पवन जब छूता है तो ऐसा लगता है जैसे दाग दिया, जल गया, अंगार जैसा लगता है आज वह पवन। ताही छीय देह दया महा दुख दही गौ, आज जला रहा है वही घने आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरनी के मारी बेको रही गौ। वही घने आनंद श्री कृष्ण जो जीवन के हेतु थे, जिला रहे थे, जीवन का अर्थ जल भी होता है, वही घने आनंद जो जल बरसाते थे, घनयानंद का अर्थ आनंद का बादल, एक दिन जीवन देते थे, तो श्री कृष्ण के अर्थ में जीवन देना, उल्लास देना, प्राण दे देना, वही घनयानंद जो जीवन को देते थे, आज उनका नाम लेना भी, कृष्ण गोविंद कहना भी मरी हुई को मारने वाला हो गया। तो कृष्ण का नाम लेने में पहले आनंद उत्पन्न होता था, उल्लास होता था हृदय में, लेकिन आज उनका नाम मरी हुई को मारने वाला है, नाम लेने पर और दुख हो रहा है। वे कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त हो, वे कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त हो, तीन छाह आए अब गहन जोगई गौ, सुरती सुजन चैन बिछिना ससिची जीना, वही जमुना पयाली वह पानी बही गौ, वही जमुना पयाली वह पानी बही गौ, वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिये देह दैया महा दुख दही गौ, वे घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरिनी के मारी बे को रही गौ, वे घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरिनी के मारी बे को रही गौ। अर्थात कृष्ण के विरह में कुंज या जमुना का जल या हवा अथवा यहाँ तक कृष्ण का नाम सब दुख देने वाला हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, उल्टे और दाह उत्पन्न कर रहा है। जब गोपियां कुंज की छाया में जाती हैं तो भगवान के साथ जो जो लीलाएं हुई हैं वही याद आने लगती है, इसीलिए कुंज की छाया काटने दौड़ती है, भयानक लग रही है। जो जो वस्तुएं कृष्ण की स्मृति को और उभारने वाली हैं वो और बुरी लग रही है, गिरिराज की तरफ तो कभी देखती भी नहीं थी, दूर से ही इसे देखने पर जलन हो जाती, कृष्ण के साथ रहने पर सब कुछ सुखद था, लेकिन कृष्ण से बिछोड़ करके सब कुछ दुखद हो गया। सूरदास जी ने लिखा है, इन्हीं के भावों का अनुवाद अन्य भक्तों ने किया है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गुंजे, पवन पानी घन सार सजीवन दधि सुत किरण भानु भई गुंजे। भानु भई भुंजे, गोपाल बैरिन भई कुंज बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज ए बुधो कहिए माधव सो विरह कदन करी मारत लुंज सूरदास प्रभु को मग जोवत सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया भई बनन ज्यों गुंजे अखिया भई बनन ज्यों गुंजे बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। फिर अपने सखियों में ही परस्पर कहती हैं कि सखी हमारे नेत्रों से बादल हार गए, उनमें उतना पानी नहीं है और वे निरंतर नहीं बरसते हैं, लेकिन हमारे नेत्रों को क्या हो गया, ये तो रात दिन रोते रहते हैं। देखो माई नैनन सोघन हारे देखो माई नैनन सोघन हारे बिनही ऋतु बरसत निसिबासर बिनही ऋतु बरसत निसिबासर सदा सजल दौतारे देखो माई नैनन सोघन हारे देखो माई नैनन सोघन हारे। माई मन सखी, भागवत में भी अम्ब शब्द आया सखियों के लिए। हे सखी देखो हमारे नेत्रों से ये घन हार गए, घन हार गए मतलब घन में मेघ में निरंतर जल देने की शक्ति नहीं रही, लेकिन हमारे नेत्रों से तो ये भी हार गए, अर्थात रात दिन आंसू निकलते रहते हैं। बिनही ऋतु बरसत निसिबासर सदा सजल दौतार, हमारे आंखों में बरसात हो रही है, वर्षा काल से उपमा देते हैं आंखों की। उरध श्वास समीर तेजयति सुख अनेक द्रुम डारे बदन सदन करीब से बचन खग ऋतु पावस के मारे देखो माई नैनन सोघन हारे देखो माई नैनन सोघन हारे देखो माई नैनन सोघन हारे। जो लंबी सांस चल रही है विरह में शोक में फफक फफक करके रो रही है, तो यह लंबी सांस जो है यही तेज हवा है, जैसे बरसात में तेज हवा चलती है। उरध श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे, जैसे तेज हवा तूफान से अनेक वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, उसी तरह से हमारे सभी सुखों को उखाड़ दिया इस हवा ने, सुख रूपी द्रुमों को वृक्षों को उखाड़ दिया। उरध श्वास समीर तेजयति सुख अनेक द्रुम डारे बदन सदन करी बसे बचन कग ऋतु पावस के मार। तो वर्षा होने पर घनघोर वर्षा होने लगती है तो और आंधी आती है तो जितने भी पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले में कहीं वृक्ष के खोनर में चले जाते हैं, तो हमारे जो वचन रूपी पक्षी हैं सब हमारे मुख में समा गए, मतलब अब बोली नहीं निकल रही, इतना दुख हो रहा है कि अब एक भी बोली नहीं निकल रही। बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मारे, पावस ऋतु के अत्याचार वचन खग, मारे वचन रूपी पक्षी सब बदन सदन में बस गए, मतलब मुख में समा गए, अब उनका पता ही नहीं चलता है। अर्थात कृष्ण के इस भारी विरह वेदना में हमारे मुख से अब वचन नहीं निकल रहे हैं। ये अर्थ
धरी धरी बुंदा परत कंच की पर मिलियन जन सकारे, धरी धरी बुंद परत कंच की पर मिलियन जन सकारे, मानव शिव की पर्ण कुटी बीच धारा श्याम मीनारे, देखो माई नयनन सो घन हारे, देखो माई नयनन सो घन हारे, देखो माई नयनन सो घन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे, सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवास अश्रु सलिल के धारे, बूढ़त ब्रजही सूर को राखे, बूढ़त ब्रजही सूर को राखे, बिनु गिरि वर धर प्यारे, देखो माई नयनन घन हारे, देखो माई नयनन सो घन हारे। मिरी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे, बुसु मेरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे, बूढ़त ब्रजही सूर को राखे, बूढ़त ब्रजही सूर को राखे, बिनु गिरि वर धर प्यारे, देखो माई नयनन सो घन हारे, देखो माई नयनन सो घन हारे, देखो माई नयनन सो घन हारे।
चंद्रमा की ओर देख करके गोपियां कहती हैं, सखी को है कोई कोई ऐसा है जो चंद्रमा को मना कर दे उगे नहीं, कौन मना करेगा। कहते हैं
को माई बर जया चंद, को माई बर जया चंद,
माई मन हे सखी कोई बरज दे इस चंद्रमा को यह न उगे।
कोप बहुत हम रूप कुमुदिन करत आनंद, कुमुदिन करत आनंद, को माई बर जया चंद, को माई बर जया चंद।
फिर मनाती हैं कि चंद्रमा के विरोधी सब कहाँ चले गए,
कहा कुहू कह रवि अरुतन चुर, कहा बलाहक कारे, कहा कुहू कह रवि अरुतन चुर, कहा बलाहक कारे, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, चलतन चपल रात रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे, बिरहीन के तन जारे, को माई बर जया चंद।
कहाँ गई अमावस्या की रात? अमावस्या की रात आ जाए तो चंद्रमा नहीं रहता है ना? कुहू कुहू रजनी, अमावस्या कहाँ चली गई? कहाँ सूरज चला गया? सूरज रहता है तो ये चंद्रमा फीका हो जाता है, चाहे नहीं दिखाई देता। कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, तमचूर में ताम्रचूर, जिसकी शिखा तांबे जैसी, वो मुर्गा कहाँ मर गए? सब वो भी बोलते तो चंद्रमा चला जाए। मुर्गा के बोलने से थोड़े चंद्रमा जाएगा, लेकिन प्राय जब चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, भोर होता है, तब वे बोलते हैं। बीरा में ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के बोलने से नहीं, मुर्गा के बोलने से चंद्रमा चला जाता है। तो कहते हैं कहाँ गई अमावस्या की रजनी, कहाँ गया रवि और कहाँ ताम्रचूर, मुर्गा कहाँ मर गए, कहाँ बलाह कारे, ये काले काले मेघ कहाँ चले गए? वो भी छा जाते आकाश में तो ये नहीं दिखाई देता। बलाहक मतलब मेघ। कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ बलाहक कारे, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे। ये चल नहीं रहा है तो चपल, यह चंचल चंद्रमा है, इसका चित्त बहुत चंचल है, लेकिन ये रथ को रोक करके हम लोगों को जलाने के लिए खड़ा है। बिरहीन के तन जारे, हम बिरहिनियों के शरीर को जला रहा है, जान बुझ करके रोक रखा है रथ। चंद्रमा रुके नहीं है, जो उनकी गति है चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुख। अब जिन लोगों ने चंद्रमा को उत्पन्न करने में मदद किया है उनको गाली दे रही है। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर ही। निंदति शैल मंदराचल को गाली दे रही है, ये नहीं रहता तो समुद्र मंथन नहीं हुआ होता, कहाँ से कहाँ ले जाकर। निंदति शैल, शैल मतलब मंदराचल पर्वत, निंदति शैल उदधि और क्षीर समुद्र को गाली दे रहे हैं, जहाँ से चंद्रमा निकला। उदधि पन्नग को और वासुकी नाग को गाली दे रहे हैं। निंदा का अर्थ गाली देना, साप देना। ये सब लोगों ने मिलकर चंद्रमा को उत्पन्न किया। और सापति कमठ कठोर है, और उस कठोर पीठ वाले कच्छप को लाखों गाली दे रहे हैं, जो मंदराचल को धारण किया और तब समुद्र मथा गया और उसे चंद्रमा निकला। निंदति शैल उदधि पन्नग को, निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। और आशीर्वाद किसको देती है? जरा नाम की पिसाची को, जिसने जरा संध को जोड़ करके और जीवित कर दिया था। तो जब राहु को मारा गया तो मुख का नाम राहु रह गया और शरीर का नाम केतु रह गया। तो आशीर्वाद देती हैं कि हे जरा, तुम जीवित रहो और किसी तरह से फिर से राहु और केतु को जोड़ दो कि चंद्रमा को सीधे खा जाए। तो गर्दन कटा हुआ है तब तो इतना आक्रमण करता है, और जुड़ जाएगा तब तो इसको बिना खाए नहीं रहेगा, इसलिए आशीर्वाद दे रही है और निंदा करके। निंदति शैल उदधि पन्नग, ये सूरदास जी का वाक्य है। यहाँ से कहाँ कुहू कहाँ रवि, ये तो गोपियों का वाक्य है। और निंदति, यह दो लाइन सूरदास जी का अपना कमेंट है इस पर। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर ही, देती आशीष जरा देवी को, देती आशीष जरा देवी को, राहु केतु किन जो रही को, माई बर जया चंदई को, माई बर जया चंद।
त्यों जलहीन मीन तन तल फत त्यों ही तपत ब्रजवालहीन सूरदास प्रभु बेगी मिलावहीं मोहन मदन गोपालहीं।
जैसे जल के बिना नदियां तड़पती हैं इस तरह से ब्रजबालाएं तड़प रही हैं।
प्यारी सखी मेरे लिए कृष्ण के विरह में जीना मुश्किल हो गया, सांस लेना पहाड़ जैसा लग रहा है। घनानंद जी कहते हैं अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महा, अंग अंग में उद्वेग की मुरझानी छा गई है। मुरझानी का अर्थ सुखापन दुख, सांस लैबो वाली गिरहूते गरुओ लगे, सांस लेना पर्वत से भी भारी लग रहा है, लगता है जैसे पर्वत उठा रही। एक सांस लेना गिरते गरुओ लगे, गरुओ में भारी, पहाड़ से भी भारी लग रहा है सांस लेना। सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे बिने दीठी तो अदीठी सी उजार घरुओ लगे। प्राण प्यारे कृष्ण को देखे बिना दीठी तो अदीठी सी दृष्टि अदीठी सी लग रही है, शून्य लग रही है, और घर भी उजार लग रहा है। घर में सब कुछ है, अपने स्वजन भी हैं, वस्तुएं ही हैं भी हैं, लेकिन उजार घर वो लगे, घर भी उजार जैसा लगता है। जवन स्वरूप गुण सूल से सलत गात, और अपनी जो जवानी है नौजवान है और अपने भीतर जो गुण है सुंदरता है यह तो सूल जैसा वो लग रहा है। अपने शारीरिक सौंदर्य के विषय में कहते हैं कि अब यह सुंदर शरीर भी सूल जैसा लग रहा है, और तूल तीन कालो है गुमान हरुओ लगे। और हमारा शरीर या हम तो तूल रुई के तिनका जैसा हल्का हो गई है, और हमारा गुमान हल्का हो गया, हरुओ लगे, गुमान हरुओ लगे, गुमान बिल्कुल हल्का हो गया। और जे स्वाद घनयानंद बिचारे कौन, और स्वाद की क्या बात कहे सखी संसार में। विषम विरह विषम जुर जीवो करवो लगे, ऐसा विरह का ज्वर चढ़ा है, जुर मैंने ज्वर, कि जीना भी कड़वा लग रहा है। बुखार आ जाने पर भोजन कड़ा लगता है, खाया नहीं जाता, तीखा लगने लगता है। तो विरह का ज्वर ऐसा है कि जीना भी कड़ा लगने लगा है, मतलब जीने की इच्छा नहीं। अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महाय, अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महाय, सांस लैबो आली गिरी हुते गरुओ लगे, सांस लैबो आली गिरी सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे दिन, 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 दीठी पाया दीठी सी उजार घरु लगे, दीठी सोया दीठी सी उजार घरु लगे, जवन स्वरूप गुण सुन से सलत गात, जवन स्वरूप गुण सुन से सलत गात, तुलती में कलो है मान हरु लगे, फूलती है कलो है गुमान हरु लगे। और जे स्वाद घन आनंद विचारे कौन, और जे स्वाद घन आनंद विचारे कौन, विष विरह विषम जुर जीवो करु लगे, विषम विषम जुर जीवो करु लगे। और
बिरादे समाचार जीव करू लगे समझूर जीव करू लगे
हरि हरि परदेश बहुत दिन लाए हरि परदेश बहुत दिन लाए हरि परदेश बहुत दिन लाए हरि परदेश में बहुत दिन बिता दिए हरि परदेश बहुत दिन लाए कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरियाए हरि परदेश बहुत दिन लाए कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरियाए वीर बताऊ पंथी हो तुम कौन देश ते जाए वीर बताऊ पंथी हो तुम कौन देश ते आए यह पाती हमारी ले दीजो यह पाती हमारी ले दीजो जहां सांवरे छाए जहां सांवरे छाए हरि परदेश बहुत दिन लाए हरि परदेश बहुत दिन लाए दादुर मोर पपीहा बोलत दादुर मोर पपीहा बोलत सोवत मदन जगाए दादुर मोर पपीहा बोलत दादुर मोर पपीहा बोलत सोवत मदन जगाए सूर श्याम गोकुल ते बिछुरे सूर श्याम गोकुल ते बिछुरे आपुन भये पराए आपुन भये पराए हरि परदेश बहुत दिन लाए 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 कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरियाए हरि परदेश बहुत दिन लाए
हरि सखी नंद कुमार इस समय ब्रज में नहीं है
नाहिं अब ब्रजनंद कुमार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार परम चतुर सुंदर सुजान सखिया तन के प्रतिहार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार रूप लकुट रोके जुरहत यलि अनुदिन नैनन द्वार ता दिन ते उर भवन भयो सखी शिव रिपु की संचार शिव रिपु को संचार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार दुख आवत कछु अटकन मानत दुख आवत कछु अटकन मानत सुनो देखी अगार अंशु सास जात अंतर ते करतन कछु विचार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार निशान में स कपाट लगे बिनु ससिमु सत सत सार सूर प्राण लटिला जन छाड़त सुमिरी अवधि आधार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार नाहिं अब ब्रजनंद कुमार हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती चितवती रहत चकोर चंद्र ज्यो चितवती रहत चकोर चंद ज्यो सुमिरी गुण रोवती सुमिरी गुण रोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती चितवती रहत चकोर चंद ज्यो सुमिरी गुण रोवती पतिया पठवती मसी नहीं खूटती लिखी लिखी मानहु धोवती पतिया पठवती मसी नहीं खूटती लिखी लिखी मानहु धोवती भूखन दिन निसी निंद हिरानी भूखन दिन निसी निंद हिरानी एक पल नहीं सोवती एक पल नहीं सोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जावती जे जे बसन श्याम संग पहिरे जे जे बसन श्याम संग पहिरे ते अजहू नहीं धोवती जे जे बसन श्याम संग पहिरे ते अजहू नहीं धोवती सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिनु वृथा जन्म सुख खोवती सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिनु वृथा जन्म सुख खोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जावती हरि को मार्ग दिन प्रति जावती चितवती रहत चकोर चंद ज्यों चितवती रहत चकोर चंद ज्यों सुमिरी सुमिरी गुण रोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जावत हरि को मार्ग दिन प्रति जावती चलत न माधो की गही बाह चलत न माधो की गही बाह बार बार पछतात तब ही ते यह ये सूल मन माह चलत न माधो की गही बाह घर बन कछु न सुहाई रैन दिन मन हूँ मृगी दबदाह मिटती न तपती बिना घन श्याम ही कोटि घनी छन छाह कोटि घनी घन छाह बिलपति अति पछताति मन ही मन चंद गह जनुरा सूरदास प्रभु दूरी सुधारे सूरदास प्रभु दूरी सुधारे दुख कहिए की पाहे चलत न माधो की गही बाई।
कोई गोपी कह रही है कि अरे सखी जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे अक्रूर के रथ पर चढ़कर तो मैं क्यों नहीं उनकी बाह पकड़ करके रथ से उतार ली अब पछतावा हो रहा है।
चलत न माधो की गही बाई बार बार पछताते तब ही ते यह सूल मन माहे चलत न माधो की गही बाहे चलत न माधो की गही बाहे चलत न माधो की गही बाह चलत न माधो